तनु आहान के पीछे लंदन पहुंच चुकी थी। अक्षरा के सामने वो चाहत का जिक्र तक नहीं कर सकती थी, तो वहीं यहाँ कनाडा में अकेले होने पर तनु ने आहान को चाहत के बारे में बताया, जो कि उसकी असली डॉल थी। आहान को कुछ याद नहीं था और ना ही उसे तनु की बातों पर यकीन हो रहा था। तनु ने अब पूरा फैसला आहान पर छोड़ दिया था कि वो वापस अक्षरा के पास इंडिया जाता है या फिर चाहत को ढूंढकर सच का पता लगता है। तनु से चाहत के बारे में जानने के बाद कुछ पल के लिए आहान बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने तनु की तरफ देखकर धीरे से पूछा, अगर वो मेरी डॉल है तो मुझे छोड़कर क्यों गई थी? हमारी शादी होने वाली थी। अक्षरा ने मुझे बताया था कि शादी के वक्त मैं उसे ओबेरॉय पैलेस से वेन्यू लेकर आने के लिए निकला था और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अक्षरा ने आहान को जो कहानी बताई थी वो उसने तनु को बता दी। तनु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, उस लड़की ने तुमसे झूठ बोला है। हाँ, तुम चाहत को लेने के लिए ओबेरॉय पैलेस गए हुए थे, लेकिन चाहत वहाँ से कहीं चली गई थी। उसे ढूंढते हुए तुम हाईवे पर पहुंचे थे और वहाँ तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तनु की बातें सुनकर आहान के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने उसी अंदाज में कहा, क्या वो मुझे छोड़कर चली गई थी? पर क्यों छोड़कर गई थी? मुझे नहीं पता आहान, ये तो सिर्फ चाहत ही जानती हैं। इसके पीछे भी अक्षरा का ही हाथ है। अब तुम्हें बताती हूँ अक्षरा गोयंका कौन है। तुम अपने डैड विजय ओबेरॉय से नफरत करते हो, तुम्हें इतना तो याद ही है। उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक बिजनेस डील चलते मिस्टर गोयंका की बेटी अक्षरा गोयंका की शादी तुमसे तय की थी। तुम उससे शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए तुमने उसे किडनैप कर लिया था। मुझे सब इसलिए पता है क्योंकि मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी। अचानक अक्षरा शादी के बीच में आ गई और उसने चाहत को वहां से किडनैप कर लिया होगा या कहीं भेज दिया होगा और खुद उसकी जगह ले ली। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम सब कुछ भूल गए। याद करो, वहां अक्षरा गोयंका तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारी दुश्मन है। तनु काफी शांति से आहान को सब कुछ समझा रही थी। सारी बातें उसके दिमाग से ऊपर जा रही थी, इसलिए आहान चुप था। उसकी हालत तनु समझ सकती थी। उसने आहान को चुप देखकर कहा, तुम्हें अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चों के लिए चाहत को ढूंढना होगा। आहान, कुछ भी करके यहाँ कनाडा में रहो। अगर अक्षरा यहाँ आ गई या तुम अक्षरा के पास वापस गए तो तुम मौका खो दोगे चाहत को ढूंढने का। तुम्हारे सवालों के जवाब चाहत ही दे सकती हैं। ठीक है, मैं उसे ढूंढ दूंगा और अपने सवालों के जवाब भी ले लूंगा। उसे मेरे साथ नहीं रहना है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे कुछ याद भी नहीं है। और अगर उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है तनु, तो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। आहान ने अपना डिसीजन सुनते हुए कहा, जिसे सुनकर तनु को काफी गुस्सा भी आया। जो आहान चाहत के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, अब उसे चाहत के होने या ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऊपर से वो चाहत से उसका बच्चा भी छीनना चाहता था। पता नहीं मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया ही क्यों। प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे वो हर्ट हो। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है आहान, तुम उसकी पहली और आखिरी उम्मीद थे। कुछ तो बड़ा हुआ होगा तभी चाहत तुम्हें छोड़कर गई थी, वरना वो तो खुद तुम्हारे बिना रहने के बारे में नहीं सोच सकती थी। बहुत प्यार करती है वो तुमसे, तनु ने आहान को समझाते हुए कहा। याद नहीं है तनु, उससे मिलने के बाद अतीत में मैंने उसकी तस्वीर देखी थी जहां मैं उसे प्यार से खाना खिला रहा था। मैं उसे इतना प्यार करता था फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। मुझे तो ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। खैर छोड़ो, अब तो उससे मिलकर ही सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे, आहान ने जवाब दिया। तनु को गुड नाइट विश करने के बाद वो अपने कमरे में सोने जा चुका था, तो वहीं तनु भी अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह चाहत जल्दी उठ गई थी। पूरी रात परेशानी की वजह से उसे नींद नहीं आई थी क्योंकि आहान ने उसे देख लिया था। आहान से मिलने के बाद चाहत को एहसास हुआ कि वो चाहत को भूल चुका है, पर कहीं ना कहीं दिल में यही डर था कि अगर आहान उसकी जिंदगी में वापस आ जाएगा तो क्या होगा। सुबह चाहत जल्दी उठकर रेस्टोरेंट में काम करने चली गई। सुबह के 7 बजे के करीब जब सिम्मी आंटी वहां पहुंची और उसने चाहत को काम करते देखा तो उन्होंने चाहत को डांटते हुए कहा, चाहत तुम्हारी डिलीवरी में अभी मुश्किल से 1 महीना भी बाकी नहीं है और तुम हो के काम में लगी हो। मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? आपसे बात करनी थी आंटी, और यही सही वक्त होता है जब हमारे आसपास कोई नहीं होता और हम बात कर सकते हैं, चाहत ने मायूसी से जवाब दिया। वो परेशान तो हमेशा रहती थी लेकिन आज उसके चेहरे पर मायूसी थी। सिम्मी आंटी चाहत के पास आई और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, कल से तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम ठीक तो हो ना? अगर कोई बात है तो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, पर अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जैसे ही चाहत ने कहा, सिम्मी आंटी के चेहरे पर भी उदासी छा गई। इतनों महीनों से साथ रहते हुए उन्होंने चाहत को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था। सिम्मी आंटी के जज्बातों को समझते हुए चाहत ने कहा, मैं जानती हूँ आपने मेरे बच्चे और मुझे लेकर काफी सपने संजो रखे हैं। मुझे भी आपके साथ रहते हुए अपनी मम्मा की कमी महसूस नहीं हुई, पर अब मुझे जाना होगा। मैंने आपको कल बताया नहीं, लेकिन कल जो शख्स मेरे सामने गाड़ी से अचानक सामने आया था वो कोई और नहीं आहान ओबेरॉय था। बोलते हुए चाहत की आवाज कंपकपाने लगी थी। चाहत की कहानी सिम्मी आंटी जानती थी। चाहत के मुंह से आहान का नाम सुनकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उन्होंने चाहत का हाथ पकड़कर कहा, तुमने कल क्यों नहीं बताया बच्चे मुझे? मैं जाकर उससे बात करती, पूछती उससे कि आखिर तुमने उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने तुम्हारा ये हाल करके छोड़ दिया। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, शायद उन्हें मेमोरी लॉस हुआ होगा आंटी। ये गुड साइन है कि आहान को कुछ याद नहीं है। इससे पहले कि वो मुझे ढूंढकर मेरे तक पहुंचे, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, चाहत ने प्लीडिंग वे में कहा। सिम्मी आंटी को मनाना इतना आसान नहीं था। चाहत पहले भी वहां से जाना चाहती थी, पर उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। सिम्मी ने कुछ पल रुककर जवाब में कहा, कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने कहा उसे कुछ याद नहीं है, तो फिर यहाँ से जाने की क्या जरूरत है? वो हमसे वैंकूवर में मिला था और हम यहाँ विक्टोरिया में है। वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा चाहत, आज के बाद जाने की बात मत करना। अगर आहान ओबेरॉय सामने भी आ गया तब भी मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूंगी। सिम्मी आंटी काफी मजबूत औरत थी, तो उन्होंने चाहत को भी स्ट्रांग रहने का कहा। उनकी बात भी सही थी, जब आहान को कुछ याद ही नहीं था तो वो चाहत तक कैसे पहुंच सकता था। चाहत ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानती थी सिम्मी आंटी उसे वहां से जाने नहीं देगी, लेकिन चाहत ने मन ही मन ये डिसीजन ले लिया था कि वो अब वहां और नहीं रुकेगी। कुछ ही देर में वहां सुबह ब्रेकफास्ट के लिए काफी सारे लोग आने लग गए, तो काफी भीड़ जमा हो गई। चाहत के दिमाग से भी आहान का ख्याल निकल गया, तो वहीं सिम्मी आंटी अभी भी उसे बात को भूली नहीं थी जब चाहत ने उसे वहां से जाने के लिए कहा। वो परेशान हालत में अंदर काउंटर पर बैठी थी, तभी उनके हस्बैंड मिस्टर जसप्रीत ग्रेवाल आए। उन्होंने सिम्मी की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम्हें काफी परेशान लग रही हो? बाहर चाहत को देखा तो वो भी मायूस है। तुम दोनों के बीच कहीं किसी बात को लेकर बहस तो नहीं हुई?
कैसे बात कर रहे हैं आप? चाहत मेरी बेटी की तरह है, इतने महीनों से हम साथ रह रहे हैं, कभी आपने मुझे देखा है उस पर गुस्सा करते हुए? सिम्मी ने मुंह बनाकर कहा, जिस पर जसप्रीत हंसकर बोले, मैंने बहुत बार तुम्हें चाहत पर गुस्सा करते हुए देखा है। जब वो खाना नहीं खाती तो तुम उसे कैसे डांट कर खाना खिलाती हो, तुम्हारी बात नहीं मानती तो तुम उस पर बहुत गुस्सा करती हो। हाँ, तो उसने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया है, मैं उसकी माँ की तरह हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है अपनी बेटी का केयर करने का। अगर वो नहीं मानेगी तो उसे डांटूंगी ही ना, सिम्मी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। फिर कुछ देर की चुप्पी के बाद वो धीरे से बोली, जसप्रीत जी, चाहत यहाँ से जाना चाहती हैं। हाँ, तो कौन सी नई बात है, उसने पहले भी यहाँ से जाने की बात कही है, हम उसे मना लेते थे तो इस बार भी मना लेंगे, जसप्रीत ने लापरवाही से जवाब दिया। नहीं, इस बार बात अलग है, इस बार मैंने उसकी आंखों में जुनून देखा है, वो सच में यहाँ से चली जाएगी तो हम कैसे रहेंगे, सिम्मी ने नम आंखों से कहा। वो चाहत से कुछ ज्यादा ही अटैच हो गई थी। मैंने कहा ना, मैं मना लूंगा, तो तुम चिंता मत करो, जसप्रीत ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा और फिर अपने काम पर लग गए। सिम्मी के दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी कि अगर चाहत उन्हें छोड़कर चली जाएगी तो क्या होगा। चाहत जब अंदर आई और उन्हें परेशान देखा तो वो उनकी हालत समझ गई। चाहत ने अपने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर सिम्मी के पास आकर कहा, आप तो जानती है ना, मुझे थोड़े टाइम बाद अंदर खलबली सी उठती है कि मैं चली जाऊं, पर कहीं नहीं जाऊंगी, आप मेरी वजह से परेशान मत रहिए। तो ठीक है फिर, वादा करो कि हमें बिना बताए छोड़कर नहीं जाओगी। मैंने जसप्रीत से कहा नहीं, लेकिन एक रात तुम हमें बिना बताए छोड़कर जा रही थी, सिम्मी ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। चाहत ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और जवाब में कहा, ओके, आई प्रॉमिस, आगे से मैं वो गलती नहीं करूंगी, आपने ठीक कहा था कि आहान मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। चाहत के वादा करने पर सिम्मी की खुश हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे तभी एक दूसरी वेटर फोन के पास आई और उसने चाहत से कहा, चाहत प्लीज बाहर ऑर्डर लेकर जाओ ना, मुझे वॉशरूम जाना है और बाहर कोई कपल बैठा हुआ है, सिर्फ एक ही टेबल बुक है। चाहत ने उनकी बात पर हामी भरी और मेन्यू के साथ बाहर पहुंची। वहां जाते ही उसने मेन्यू की तरफ देखते हुए कहा, योर ऑर्डर प्लीज। हमारे यहाँ, अचानक चाहत बोलते हुए रुक गई, उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे क्योंकि वो जिसका ऑर्डर लेने आई थी उस टेबल पर कोई और नहीं, आहान और तनु थे। उनके तेवर साफ बता रहे थे कि वो वहां खाना खाने के लिए नहीं बल्कि चाहत के ही पीछे आए थे। लो जी, ढूंढ लिया आहान ने चाहत को, देखते अब आगे क्या होता है, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, मिलते अगले पार्ट पर।